गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। ब्रह्मलीन परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा के स्वरूप श्री 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 प्रेमपुरी जी महाराज, शिखंडानंद जी महाराज और आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। श्रीमद् भागवत जी में एक बड़ी ही सुंदर एवं रोचक तथा प्रेरक कथा है वासुदेव पौंड्रक की। हमारे जो मणिपुर मेघालय हैं उस प्रदेश में ये राजा हुआ करते थे और आपका नाम वासुदेव था। उदास रहते थे, खिन्न रहते थे, मायूस रहते थे। इनकी मायूसी को देख करके दुर्भाग्य से इनके समीपस्थ निकटस्थ मंत्री वर्ग ने कहा कि वस्तुतः तो वासुदेव पूजनीय आप हैं, जो द्वारका में हैं वो तो छलिया है, छल करने वाला, मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञान विचेतसः, वो तो मिथ्या है, दम्भी है, छल है, वास्तविक तो है नहीं, अतः आपकी ही पूजा होनी चाहिए। वासुदेव पौंड्रक को पीला पीतांबर पहनाया गया, मस्तक पर मोर मुकुट रखा गया, गले में पुष्पों की माला डाली गई, कान में कुंडल झलका दिए गए, हाथ में बंसी भी दे दी, उनकी आरती भी की जाने लगी, जय जगदीश हरे। बड़े प्रसन्न थे, किंतु बात यहां तक रहती तब तक तो कोई अनुचित नहीं था। मंत्रियों ने कहा कि प्रभु, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, शमंतक मणि वो आपकी निधि है, उस दुष्ट से करके कि वस्तुतः वासुदेव हम हैं, तुम छलिया हो, मोघासा में रहते हो, मोघ कर्म करते हो, मुख ज्ञान में रहते हो, मिथ्या आचरण करने प्रथा आशाओं में हो, अतः दूत के साथ में शमंतक मणि, सुदर्शन चक्र और पंचजन्य शंख हमें बेच दिया जाए। यादों की सभा ने तलवारें निकाले। श्री कृष्ण कहते इनमें इसका क्या दोष है, ये डाकिया है, डाकिया तो डाक लेके आता है, शुभ समाचार भी हो अशुभ समाचार भी हो, उसमें इसका क्या दोष, सम्मान करो, विदा करो, कह दो कि बड़ी कीमती चीजें हैं, दूत के साथ नहीं भेज सकते। कृष्ण स्वयं बड़ी सेना लेकर के गए। काशी के राजा को ज्ञात हुआ कि कृष्ण है दुष्ट है, बीच में ही रोकने के लिए कोशिश की। काशी राजा को एक वरदान था कि जहां उसका सिर गिरेगा वहां पर अकाल हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने उसके सिर के छेदन करके उसके अपने ही राजमहल के आंगन में डाल दिया। कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि वासुदेव पौंड्रक मारा गया। मैं जो नहीं हूं उसकी एक अपने आप में भ्रांति होना, इसको मोघ कहते हैं, ग्लैमर है, शो। इस मोघ आशा, मोघ कर्म, मोघ ज्ञान को थोड़ा और स्पष्टता से समझना चाहिए। हमारे आश्रम में कई प्रकार के लोग आते हैं, अधिकांश लोग जो आते हैं उसमें कुछ विचित्र लोग भी रहते हैं कि महाराज जी मुझे अमेरिका जाने के लिए पूरी परमिशन मिल गई है, ग्रीन कार्ड, नहीं 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 जी, सिटीजनशिप मिल गया है, अगले सोमवार को टिकट भी है, मैं अपनी वाइफ बच्चों के साथ जा रहा हूं, महाराज जी मुझे कैप्सूल कोर्स करा दीजिए योग का। क्यों, जाने के पहले कैप्सूल कोर्स का क्या हेतु है, सर जी वहां जाकर के सिखाएंगे ना, आपको बेसिक पता है, व्हाट इट मेक डिफरेंस स्वामी जी, आप कैप्सूल कोर्स करा दीजिए। लोग सुबह 10 रुपए में योग सीखते हैं और शाम 100 रुपए में बिक्री करते हैं। गुरु भी लोग ऐसे बनते हैं, सुबह मंत्र दीक्षा ले लेंगे, शाम को मंत्र देना चालू कर देंगे, क्या करो आप। एक महिला आती थी, देवी थी, बड़ी महत्वाकांक्षी। पुरुष यदि महत्वाकांक्षी हो ना तो अधिक उपद्रव नहीं करते हैं, महिलाएं यदि महत्वाकांक्षी हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। ये भी बड़ी महत्वाकांक्षी थी। ये नहीं कहती थी कि मैं लोगों को कैसे ध्यान कराऊं, मैं कैसे करूं, लोगों को कैसे करूं। गुरु बनने की बड़ी महत्वाकांक्षा हमेशा आकर के पूछती थी। ये नहीं कहती थी कि मैं क्या करूं, महाराज जी मैं लोगों से क्या क्या करवाऊं। हम पूछते रहते हैं कि आप क्या करना, अरे उनको लोगों को शांति हो, उनसे पूछा जाए मां आपके मन में शांति क्या है, वो हो जाएगी अपने आप, क्या फर्क पड़ता है। बाटन हरे को लगे जो मेहंदी को रंग, मेहंदी किसके लिए बांट लो तो अपना हाथ लाल होता है, दूसरों की शांति के लिए प्रयत्न करते रहो तो अपने हो जाएगी। तर्क तो अच्छा है किंतु वो बार बार हमें कहती है शांति कैसे दी जाए। ऊपर से तो देखने को लगता है कि यह सेवा की भावना है किंतु जिसको समझाने की कोशिश करो तो वो समझने के लिए तैयार नहीं है। बुनियादी लक्षण क्या है, स्वयं के विकास का नहीं है, सृजन का नहीं है, रूपांतरण में कोई रस नहीं है। हैरानी की बात है कि हम दूसरों के कल्याण के लिए कुछ चेष्टा करना चाहते हैं किंतु वो उचित होते हुए भी हमें क्षमता तो हो। मैं चाहूं कि मैं दूसरों को संस्कृत पढ़ाऊं किंतु यदि मैं स्वयं नहीं पढ़ाऊंगा तो आवश्यक है मैं पहले पढ़ूं, अपने पांव को स्थिर करूं। जिस व्यक्ति के दोनों पांव ही नहीं है वो आपसे कह दे आओ मेरे कंधे पर बैठो मैं आपको लेकर के जाता हूं, एक उपहास है। अंधे नैव नियमाना यथांधा, श्रुति कहती है अंधा आदमी कहेगा आओ मैं आपको पहुंचा दूंगा, वो कहां लेके जाएगा यदि वो खुद वहां नहीं गया है तो। ये महिला को रस था दुनिया में क्रांति करने के लिए, महिला को रस था दुनिया को सुधारने में। रोज मेरे पास कोई कोई आता है, कुछ एक ख्याल पकड़ता है किंतु ये महिला है वो एक विशिष्ट क्षमता संपन्न थी। उसने एक दिन हमसे पूछ लिया महाराज जी मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है कि नहीं हो गई है। मैंने उनसे सीधी नहीं बात कही, मैंने टेढ़े से कही। मैंने कहा देखो कि एक महिला ने अपनी सास से पूछा था मेरा गर्भ हो गया है अब कब जाकर के प्रसूति हो जाएगी, मैं रात में सोती रहूं और बच्चा पैदा हो गया तो मुझे कैसे पता चलेगा। सास ने कहा तुमको क्या, पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा। तो समझी नहीं आप कहना क्या चाहते हो। मैंने कहा यही कि यदि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई तो आपको स्वयं को पता हो जाएगा। माते अभी तो कोई कुंडलिनी जागरण के कोई एहसास नहीं दिख रहे। उस दिन से उसने आना बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद में हमने सुना कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कुंडलिनी योग नाम की संस्था खोली, सबको वो कुंडलिनी जागृत करा रही है, उन लोगों की कुंडलिनियां जागृत हो भी रही है। कहते भी दीवाने सुनते भी दीवाने, ये मोघाशा क्या होता है। सदा नास्तिकों ने यही कहा है ईश्वर नहीं है। उनसे कहो कि ईश्वर नहीं है तो क्यों कहते हो, सामने तो लाओ, सामने लाओ देखे उनको। बड़ी मुश्किल बात है। मुझे पता नहीं कि आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि 68-69 में सूरत में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। ब्रह्मचारी रहे, घर घर गए पैसा लेने के लिए, लोगों ने कहा साधु बने हो उल्टा सीधा काम करते हो, घर में बैठ करके जब ध्यान नहीं कर सकते। ये राजकोट की बात है, बाढ़ आई हुई है, लोग डूब गए हैं, गांव के गांव नष्ट हो गए हैं, लोग को पानी की बूंद बूंद के लिए भाड़ा का पानी नहीं पी सकते, मोहताज है, खाना तो दूर की बात। हम चाहते थे जाकर कुछ सेवा करें, लोगों ने पैसे नहीं दिए, बंबई में दिए थे 22 लाख रुपए इकट्ठा किया था 69-70 की बात है। अब जब मंदिर बनाना था तो गए मंदिर बना रहे, अरे ईसाई लोगों से कुछ सीखो सेवा करते हैं मंदिर बना रहे, इतने मंदिर है कोई कम है क्या। जब मंदिर बनाने के लिए चंदा मांगो तो कहते हैं ईसाइयों से सीखो कुछ सेवा करो, और बाढ़ आई हुई है वहां पर उनकी सेवा के लिए चंदा मांगो धर्म करो ध्यान करो, ये क्या है। लोग ऐसे रहेंगे, जब धर्म की बात करो तो बोले सेवा करो, सेवा की बात करो तो बोले मंदिर करो। ये दोनों ओर ही उनकी जो ज्ञान की नींव है वो मोह है, व्रथा है, मिथ्या है। एक बात है, ये आजकल तो आपके टीवी है उसमें चैनलें लगी हुई हैं, तो आप ऐसे करके रिमोट से चैनल बदली करते हैं। तो जिस चैनल पर आप जाएंगे उसी चैनल का कार्यक्रम आप देख पाएंगे। यदि आपका कोई कार्यक्रम ए चैनल पर आता है और बी सी डी में घूमते रहे तो वो कार्यक्रम नहीं आएगा। जैसे कि पहले आकाशवाणी हुआ करता था 352.9 यानी कि 850 किलो साइकिल पर आकाशवाणी अहमदाबाद बड़ौदा राजकोट भुज आता रहा। उन पर घूमने से बंबई को नहीं सुन सकते। हमारी भी एक मति है, हमारी एक गति है, हमारी एक बुद्धि है, उसका एक स्तर है। ये जो स्तर है तो हर व्यक्ति के अपने जीवन में जब वह कोई साधन करता है तो उसकी समझ उसकी अपनी गतिमति के अनुकूल होगी। यदि व्यक्ति ने विज्ञान पास नहीं किया है तो वो आर्ट्स का विद्यार्थी विनयन का विद्यार्थी रहे विज्ञान की बातें जल्दी नहीं समझ सकता है। विज्ञान पास किया हो तब भी वो टेक्निकल सब्जेक्ट को जल्दी नहीं समझ सकता है। इसलिए भगवान की बातें यदि नास्तिक को कही जाए तो कोई विनोबाजी भावे कहते हैं कि यदि आप दिया जलाओ बारिश के दिन हो और उस मोमबत्ती के सहारे या छोटी वो टिमटिम होती है उसके सहारे अगर आप बैठ के गीताजी पढ़ो तो वहां पर जो कीड़े आ जाएंगे उन कीड़ों को खाने के लिए छिपकली आती है। आप गीता पढ़ते रहो आपके गीता अध्ययन से छिपकली का कोई वास्ता नहीं है। वो उसका वास्ता क्या है वहां जो कीड़े जमा हुए उसको खाने के लिए। एक बार महात्मा ने वो सुंदर बात कही आप गीता का पाठ करो। गीता का पाठ करते हो आपने अपने घर में एक कुत्ता पाल रखा है जो बड़ा प्रेमी है। जब आप ध्यान करने बैठते हो तो साथ में बैठता है, पूजा करने बैठे तो साथ में बैठता है और जब आप पाठ करने बैठो तो साथ में बैठता है। और आप जितने जोर से पास करेंगे वो समझता है कि आप मेरे को प्यार कर रहे हो तो वो उतना जोर से पूंछ हिलाता है। ध्यायतो विषयान पुंस तो ऐसे ध्यायतो विषयान पुंस अब ऊंची आवाज में तो ज्यादा पूंछ लाएगा। वो समझता है उसको गीता से कोई तात्पर्य नहीं है, गीता से संबंध नहीं है। आप जो पाठ करो क्योंकि उसकी अपनी मानसिक स्थिति जो है वो एक स्तर अलग है। वो एक मानवीय स्तर की विचारधारा जो सेरेब्रल सिस्टम हमारा है वो उसका सेरेब्रल सिस्टम नहीं है। जो बुद्धि की प्रतिभा हम में है वो बुद्धि की प्रतिभा उस छोटे प्राणी में नहीं है। और इत्तेफाक से आप गीता पढ़ते पढ़ते वहां रख करके चले गए तो उस गीता को उठा करके वो खेलने भी लग जाएगा। उतना नहीं है उसके पत्ते भी फाड़ सकता है, उतना भी नहीं है उसको मुंह में लेकर के जैसे कि वो एक गेंद फेंको तो या एक उसको चबाने वाली एक रबर की हड्डी होती है खेलने वाली उसको दो लेके घूमता है तो गीता को मुंह में लेके घूमता भी रहेगा। क्यों? वो प्राणी है। वो प्राणी कैसा है? वो प्राणी है, वो पशु है। प्राणी तो हम भी हैं किंतु हमारी बुद्धि का स्तर जो है वो विविध अलग पृथक है और उसकी प्राणी की अवस्था ऐसी है तो उसको हम क्या दोष देंगे। अतः जो व्यक्ति ऊपर रहता है वो नीचे की ओर तो देख सकता है किंतु जो नीचे है उसको ऊपर देखना थोड़ा दुष्कर होता है। अपने आप को संभालना चाहिए क्योंकि ध्यान रहे कि हमारा जो सूत्र है ये मूढ़ता जो हमें दिखाई पड़ती है इसके पार झांकने को कोई तैयार नहीं, कोई कष्ट नहीं लेना चाहता है। हम कहेंगे कि भगवान तो दिखाई नहीं पड़ते, हम सब तरफ से सिद्ध करना चाहते हैं कि भगवान है ही नहीं। कोई 30 साल के पहले मिस्टर कूर नाम के सज्जन पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे थे, श्रीलंका से आए थे कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी में भी आए थे और मेरा दिमाग हमेशा ही खटपटी रहा है। क्या बताइए, क्या क्या कैसे करके है? सिद्ध कर सकते हो क्या? हमने बोला कृपया आप खड़े हो सकते हैं? हाँ। क्या आप अपनी ही पिता के पुत्र हैं ये सिद्ध कर सकते हो? वो डीएनए में आजकल कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। मगर वो जरूरत नहीं है कि जो डीएनए इनका है वो दूसरे का ना हो। परिवार में ब्लड कॉन्स्टिट्यूशन सबके एक भी हो सकते हैं भाइयों के। कैसे करके आप इतनी तुक करते हो? क्योंकि आपके मन के भीतर में, एक चेतना के भीतर में, आपकी समझ के भीतर में एक नास्तिकता ने घर कर लिया है। और उसी ढंग से ही आप सोच सकते, दूसरा कभी नहीं सोच सकते। वो अभी हम हरिद्वार में रहे भागवत कथा करने के लिए, तो वहां पर जहां कथा हो रही थी और कुछ भी लोग आए सुनने के लिए, एक सज्जन ने कहा कि हम गांधर्व महाविद्यालय के पीएचडी किए हुए प्रोफेसर हैं संगीत के, महाराज जी रात में आपकी सभा पूरी होने के बाद में कुछ लोग बैठ के सत्संग करते हैं, तो हम जरूर से गाइए। उन्होंने हमसे ही पूछा, महाराज जी हम क्या गाएं, तो हमने कहा कलावती गाइए। तो बोले मैं पहले देश सुना, मैंने सुनाइए, हमको तो लाभ है, दो सुनेंगे। तो उन्होंने देश सुनाया, बड़े अच्छे विस्तार करके गाया, आधा घंटा तक गाया, तो आप कलावती सुनाओ। तो बोले अब जमता नहीं है, क्यों, वो देश दिमाग में घुसा हुआ है इसलिए जमता नहीं है। हमने कहा हम सुर लगा देते कलावती का, हा? उसके सहारे सारे चले आओ, वो नहीं कर पाए, बड़ा मुश्किल होता है। जहां केरोसिन की बुदबू रह जाती है जिस गड्ढे में, कितनी कोशिश करो वहां घी नहीं जाएगा, घी की खुशबू नहीं आएगी। केवड़ा कदम पर खस का मिला हुआ इत्र भी डाल दो तो वो नहीं मिट, क्योंकि उसमें केरोसिन डाला हुआ है। एक इंसान ने अपने विचार की एक संक्रामक स्थिति बना के रख ली है, उसमें वो दूसरा विचार को प्रवेश करने देता ही नहीं है। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। क्या आप कहो कि मैं एक हाथ से भक्ति करूं दूसरा हाथ से दुश्मनी करूं, ये कैसे संभव हो सकता है। हमारी अपनी जो स्थिति है, हम एक दूसरी बात सोचें कि भगवान को हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं। भगवान को सिद्ध करना चाहते कि भगवान नहीं है, हमारे श्री रामकृष्ण परमहंस देव के पास में केशव चंद्र सेन मिलने के लिए आए थे। श्री ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव से कहा, अरे केशव बहुत पढ़ा लिखा है, वो आपके पास में आएगा, बड़ी चर्चा करेगा, बड़ा तर्क करेगा, आप कुछ किताबों को पढ़ो, लोगों से चर्चा करो और मन के अंदर तैयार करो, ये प्रश्न का ये जवाब, ये प्रश्न का। ठाकुर बोलते थे जेमनी चलाए मायर इच्छा, शकोली मायर इच्छा, सब कुछ मां की इच्छा। ठाकुर ऐसे, और केशव आए भी स्टीमर में आए, 350 लोगों के लिए आए, जैसे बंगाली लोग पहनते हैं धोती का, एक ऐसा छुप कर करके जेब में डाल लेते हैं, ऐसा धीरे धीरे करके पान की पेटी लेकर चलने वाले लोग। केशव ने आकर के बैठे, बड़ी गद्दी पर बैठे। रामकृष्ण बोले, हाँ महाराज बड़ी प्रसन्नता हुई, कहिए क्या सेवा करेंगे। तो उन्होंने कहा, तुम ये भगवान 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 करते हो, ये भगवान होता क्या है। रामकृष्ण परमहंस ने बोले, आ मां मां, अरे क्या मां मां कर रहे हो, ये भगवान बोल रहे हो, कौन है तुम्हारा राम, कौन है तुम्हारा कृष्ण, कौन है तुम्हारा शिव, कौन है तुम्हारी अम्बा। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बोले, मां मां मां, क्या मां मां कर रहे हो, मां क्या होती है, कोई दुर्गा है क्या, कोई काली है क्या, कोई सरस्वती है क्या, ये छल है, प्रवंचना है, ये ढोंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस खड़े होकर उसके गले में लग गए, वो तंग आकर के चला गया। लोगों ने पूछा, जैसे मीडिया आजकल होता है उधर भी पहले होता था, कलकत्ता में अमृत बाजार पत्रिका ने पूछा, केशव चंद्र सेन से गए थे क्या, वो बोले मैं हार गया, क्यों, सामने वाला लड़ा ही नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस से पूछा गया ये क्या हो गया, बोले तुम तो कहते थे भगवान में मानता नहीं, आया तब से बोल रहा था भगवान भगवान भगवान, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, काली काली काली, ये भगवान राम कृष्ण दुर्गा के अतिरिक्त कुछ बोलता ही नहीं था। अगर जिस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि खरगोश के सिंह, तो खरगोश का सिंह तो कहीं कहीं उपयोग होता ही नहीं है, क्योंकि खरगोश का सिंह होता नहीं, कोई अस्तित्व होगा तो बोलेगा। आकाश का पुष्प, तो आकाश का तो पुष्प होता नहीं है, तो बोलने के लिए कोई कारण नहीं है, कहां से बोलेंगे। जब भगवान शब्द का प्रयोग करते हो तो उसकी व्युत्पत्ति हुई होगी, भगवान ऐश्वर्यवान, श्री वर्चस्व आयुष्य आरोग्य धन धान्य पुत्र पौत्र, कुछ भी जगत में कमीना नहीं है, वही सर्वसत्ताधीश जगदीश है, वही तो भगवान है। हम जो चाहते हैं भगवान को, क्या इसके अस्तित्व को ना करने के लिए मोघाश हो। और ये क्या होता है, यदि किसी के पांव में कांटा लगे तो उसी के पांव में खून आएगा। आपके पांव में कांटा लगे तो मुझे खून नहीं आएगा, किंतु हमारी अवस्था क्या है, हम चाहते हैं कि आपके पांव में कांटा लगे तो आपको जितना दुख है उतना मुझे भी होना चाहिए। ये कैसे संभव होता है, हाँ, वो ऐसे महाभारत की कथा में कहते हैं, महाभारत में कहीं लिखा नहीं है कि दुर्योधन ना, ये हमारा भीम है, बहुत खाता था और शौचालय में दुर्योधन जाता था, ऐसे एक एक विनोद के लिए महात्मा लोग कहते रहते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। भूख यदि मुझे लगी है तो मुझे ही खाना पड़ेगा, बीमार यदि हम हैं तो दवाई हमें ही लेना पड़ेगा, किंतु ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं कि कैसे भी करके हम सिद्ध करें कि भगवान नहीं है, ये मूर्ता है। देखिए, मान लीजिए कि भगवान नहीं है, मान लो नहीं है, अगर आपने उनका सुमिरन किया, उनका जप किया, ध्यान किया, तो क्या आपको कोई घाटा पड़ेगा? क्या कोई घाटा नहीं पड़ता है। और भगवान है, और अगर आप भगवान का नाम नहीं लेते हो तो आपका तो घाटा ही घाटा है। ये अपने आप को ठठोलना है कि ये एक सोचने की जरूरत है। हम कहते हैं कि बुद्ध को ज्ञान हुआ था कि नहीं हुआ था। अरे, बुद्ध को ज्ञान हुआ था कि नहीं हुआ था उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप बुद्ध के ज्ञान को मानो, बुद्ध के ज्ञान को स्वीकार करो, और उसके द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है उस पर चलने की कोशिश करो। बुद्ध के ज्ञान हुआ था तो कैसे हुआ था उसमें मैं प्रयत्न करूं, ये एक सोच है, वह मोघ नहीं है, वो मिथ्या नहीं है। आपने पीएचडी किया, अच्छा, कब किया, कैसे किया, लेट मी ऑल्सो ट्राई टू डू इट। हमारे अहमदाबाद में बहुत सारी महिलाएं, ढेरों मिल जाएंगी, जो अपने घर में शादियां करके आई, दस दस क्लास पास करके आई थी, किंतु अपने बिटिया को कार में ले जाती है ट्यूशन में, बिटिया ट्यूशन करती रहती है, वो माँ बैठ के सुनती रहती है, माँ भी बिटिया के साथ में बारहवीं की परीक्षा देकर के फर्स्ट क्लास पास हो जाती है। तो खुशी की बात है कि बुद्ध को ज्ञान हुआ। यदि महावीर को ज्ञान हुआ, और कृष्ण है वो चित्तप्रज्ञ हमें समझाते हैं, कृष्ण हमें परमात्मा का गीता का भाव समझाते हैं, तो मैं कैसे समझू? पॉजिटिव थिंकिंग करके, सकारात्मक चिंतन करके आगे बढ़ना, वो मोह नहीं होता है। किंतु क्या हुआ, कैसे हुआ, सत्य क्या है, ये इन तमाम बातों को अरे बुद्ध की आंखों में झांक करके देखो। झांकने का नाम है ज्ञान, अपने तराजू पर रख करके बुद्ध को तोलने का नाम है मूर्ता। आप अपने तराजू में कैसे बुद्ध को तोल सकते हो? व्हाट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज योर कंटिन्यूटी, आपके भीतर है क्या मसाला? हाँ, किंतु हम बहुत बड़ी बात करते हैं। जो जमीन पर पांव रखने के लिए तैयार नहीं है वो ऊंची बात करता है, बुरी बात नहीं है, प्रयत्न तो करना ही चाहिए, किंतु अपने आप को सोचे तो सही। फिर आदमी की मूर्ता का जो केंद्र है वो सबसे बड़ा है, वो उसका अहंकार है। गर्व कियो सोई नर हार्यो सिया राम जी से, हाँ, ओ गुजराती में कहते हैं, मियां गिरे तो गिरे टंगड़ी ऊंची की ऊंची। क्या होता है, अपने अहंकार को टटोलो। Why you do like that? अगर हमें चाहिए तो देखिए, हाथ में ऐसे किए तो ऊपर से पानी गिरता है, हमारे घड़े को हम उल्टा कर देते हैं, घड़े को उल्टा किया तो घड़ा भरेगा कैसे? इसलिए दूसरी बात है कि आदमी हमें किसी के खिलाफ कुछ कहे, ये भी बहुत जरूरी बात है, किसी के खिलाफ कुछ कहे तो हमें अच्छा लगता है। एक दूसरे की निंदा सुनते हैं ना तो एकदम कोई शंका नहीं करते ना, कोई प्रश्न भी नहीं उठाते, अच्छा हाँ ओहो, हम तो पहले ही जानते थे भाई, अच्छा हुआ आपने कह दिया। किसी के द्वारा किसी की निंदा की गई तो उसको बहुत ही रुचि से सुनते हैं, और यदि आपकी उपस्थिति में दूसरे के लिए कुछ गुणानुवाद हुआ तो बड़ा कड़वा लगता है, ये क्या समझते क्या है अपने आप को, क्यों ये क्यों होता क्या है? मजे की बात है, किसी की निंदा कर सुने तो लगता है कि जैसे कान में पुष्प बरस रहे हैं, संगीत हो रहा है, और किसी की प्रशंसा करे तो तुम्हारे के बीजू काम न थे, अरे भाई आपको आपको कोई दूसरा काम नहीं है, वो जो बोल रहा है निंदा कर रहा है तो इसलिए जब तो कहते हैं कि अरे जिसका पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि मन जो संदेह रखते हैं आज नहीं तो कल वो आपको एक दिन धोखा देकर के रहेगा। हर कोई ज्यादा जिद करे कि भला है, ये संत है, महात्मा है, ये है वो है, गवाही दे, बड़ा मुश्किल है कि मूढ़ता को हम कैसे समझें। अमूढ़ उसको कहते हैं जो सारी दुनिया के भले होने का भरोसा रखता है, वो अमूढ़ है। ये जैन महात्मा हमारे पास में आके रुके, उस सब समय में हम जैन आप अजैन, हम जैन आप अजैन, हम जैन आप अजैन, ये क्या होता है? मुसलमान से भी ज्यादा खराब। क्यों क्यों ऐसा क्यों विचार करते हो भाई? ये जैन अजैन होता क्या है? दुर्भाग्य है कि हमारा पूरा धर्म दाहिने हाथ और बाएं हाथ के बीच में पता हुआ है। हाँ, तुमने बाएं हाथ से डाली पकड़ के दाहिने हाथ से फूल तोड़ा, छी तुम्हें और कुछ पता नहीं है क्या? ये बाएं हाथ से नहीं डाली तोड़े तो फिर पांव से पकड़ेंगे क्या? डाली तो पकड़ना पड़ेगा फूल। नहीं नहीं नहीं, बाएं हाथ अशुद्ध होता है। हमने अपने पूरे धर्म को दायां हाथ बायां हाथ स्नान किया, स्नान नहीं किया, छू गया अछू गया, बहुत मुश्किल होती है। जो 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 एक बच्चा है, 3 साल का है, 3.5 साल का है, 4 साल का है, बिस्तर से उठता है, देखता है मां नहीं है, दादी नहीं है, कोई नहीं है, तो रोता रोता आता है। आकर के धीरे से देखा कि मां घंटी बजा रही है, दादी भी घंटी बजा रही है, उनकी गोदी में आके बैठता है, पीछे से हाथ डालता है तो मां राघो तेरा सर्वनाश हो, आय हाय फिर मेरे को छू गया। अरे तुम जिस गोपाल की सेवा कर रही हो, तुम जिस छलिया की कन्हैया की सेवा कर रही हो, यही छलिया अभी बिस्तर से उठ के आया है, उसको प्यार दो दुलार दो, किंतु होता नहीं। हाँ, हमारी पुष्टावली सेवा चाहिए। हमने घर में वैष्णवत्व को पकड़ के रखा है, उसको कोई नहीं छूना चाहिए। वो जो जाग रहा है वो चल के आ रहा है, हमारी अमूढ़ता नहीं है, यहां पर मूढ़ता है। ये बहुत जरूरी बात है। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज का जन्म एक माधव संप्रदाय में हुआ और बड़े उच्च घराने के तांजोर महाराजा को 200 रानियां थी, कोई संतान नहीं थी। स्वामी जी के पिताजी वहां पर दीवान के समान थे, तो रानियों के बीच में खेलने वाले यही लोग थे। इनकी उनका नाम था श्रीधर, स्वामी जी का नाम। वो जब रहे 6-7 साल के, बचपन में उनका दोस्त रहा कौन, सफाई करने वाले का बेटा। तो एक दिन वो अपने घर में लेके आ गए। 7 साल के बच्चे को क्या पता होता है छूत क्या होती है, अछूत क्या होती है। तो दादी ने देखा कि श्रीधर को सिद्धा बोलती थी, सिद्धा का दोस्त आया है, उसके झूले में बैठाया, चांदी की कटोरी में कुछ खाने के लिए भी दिया, फिर प्यार से पूछा, बेटा तेरा नाम क्या? बोला मंगू, क्योंकि वो कर्नाटक में ऐसे नाम बोले तो कैसे हो सकता है, श्रीधर है, श्रीनिवास है, ऐसे नाम होते हैं, ऐसे थोड़ा होता है। तेरा पिता क्या करते? म्युनिसिपैलिटी में सफाई करते। हट, नौकरों को बुलाया, इसको धक्का मार के निकालो बाहर, पूरा घर धुलाओ। हाँ, चांदी की कटोरी को 3 दिन गर्म आग में तपाओ तो शुद्ध होगी। 7 साल के श्रीधर को इतना बड़ा धक्का लगा है कि मेरे दोस्त को जितना प्रेम से मैं बुला के लाया। सारा जीवन गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज ने 2 अक्टूबर को हरिजन बस्ती में जाकर के झाड़ू लगाए। उतनी नहीं बात, उनको हरे राम संकीर्तन करते हुए अपने आश्रम में हम लोग लेके आते, जैसे आप लोग बैठे कुर्सियों में ऐसे उनको बैठाया जाता, उनके चरण धोए जाते। सहस्त्र शीर्ष पुरुष, सहस्त्रास सहस्त्रपाद, ये पुरुष सूक्त बोल के उनके चरण धोए जाते, चरणों को पूछा जाता, चरणों में कुमकुम तिलक, मस्तक पर कुमकुम तिलक, एक एक वस्त्र, गले में माला, एक दक्षिणा, और आश्रम के प्रांगण में, आश्रम के मंदिर के बीच भीतर उनको बैठा करके भोजन दिया जाता। और जब भोजन पूरा हो जाएगा, महाराज जी एक पत्ता लेकर के चलेंगे, महाराज थोड़ा प्रसाद दीजिए, उनकी पंक्ति में बैठ के खाते थे। शिवानंद आश्रम तो कभी कुंभ में जाता नहीं है, किंतु गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज की शताब्दी का समय था 1987 के साल में, और 86 में कुंभ हुआ, तो शताब्दी के प्रचार के लिए हम लोग गए। जितने महामंडलेश्वर लोग होते हैं उनको एक एक भंडारा करने का एक नियम होता है कि कुंभ में जाएं तो भंडारा होना चाहिए। आचार्य महामंडलेश्वर तो करते ही है, किंतु जो जो अखाड़े हैं, जैसे कि निरंजनी अखाड़े में अगर मान लीजिए कि 200 महामंडलेश्वर हैं तो 200 भंडारे होने ही चाहिए। तो एक एक महात्मा 3-3, 4-4 भंडारे भी खा लेता है, खाता क्या है, सारा भोजन ले लेगा, परोस के छोड़ के आ जाएगा, दक्षिणा के उल्ले के उठ के चला जाएगा। तो हमारे हम तो महामंडलेश्वर न बनने में रुचि है न ये महामंडलेश्वर की परंपरा से अलग रहते हैं। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज भी नहीं बने, स्वामी चिदानंद जी भी नहीं बने, तो न हम भंडारे में जाते थे, न हमें बुलाया जाता था। किंतु हमने क्या किया, जैसे आश्रम की परंपरा है, उस पंत द्वीप के सफाई करने वाले जितने 500 से अधिक थे सफाई सेवक, उनको परिवार के साथ में अपने पंडाल में बुलाया, उनके पांव धोए गए, अरे वो इतनी गंदना उठाए तो आप रहेंगे कैसे? कि एक एक महात्मा 5 दफे भोजन कर लेता है तो कम से कम 2 दफे तो शौच करता होगा, तो शौच जाएगा कहां पर? थोड़ा गंगा में जाना, उसकी सफाई, जो सफाई करने वाले थे उनके पांव धोए गए, अखबारों में आया, टीवी में आया, बहुत लड़ाई हो गई। आचार्य मंडलेश्वरों ने मिलकर कह दिया ये सब भंगी वाले लोग हैं शिवानंद आश्रम के। हम क्या कहेंगे बैठ करके? ये मूढ़ता क्या होती है और अमूढ़ क्या होता है? अरे भगवान भाष्यकर आदि शंकराचार्य जी महाराज उस हरिजन को दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, उसमें भगवान विश्वनाथ का दर्शन करते हुए, क्या हम उनसे बड़े हो गए हैं क्या? बहुत विषम परिस्थिति है ये, कदाचित आपके दिले दिमाग में नहीं बात आएगी, क्योंकि अगर आप इन मंडलेश्वरों के बीच में या तो आप परंपराओं के बीच में रहेंगे तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है क्या नहीं। जो प्रवचन करना है वो बहुत सरल है, कोई स्कूल के शिक्षक हैं वो भी अच्छा भाषण कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अभ्यास हो गया है करने के लिए। किंतु अपने आप को जानो, गीता हमें स्पष्ट करके कहती है कि हम जो अमूढ़ बनना चाहें तो जिस ज्ञान का हम प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, आचार्य प्रभव धर्म विष्णु सहस्रनाम कहता है कि आपका सबसे श्रेष्ठ धर्म जो है वो आचरण धर्म है। यह मंडलेश्वरों की टीका टिप्पण नहीं है, साधुओं की टीका टिप्पण नहीं है, किंतु एक विश्लेषण है कि हम मूढ़ हैं कि नहीं है। और कृष्ण मूढ़ किसको कहना चाहते हैं? मोघ आशा किसको कहना चाहते हैं? वो मोघ ज्ञान किसको कहना चाहते हैं? मोघ कर्म किसको कहना चाहते हैं? ये जो हमने कहा है तमाम तो मोघ कर्म है। अरे जिसको हम रोज पाठ करते हैं, साधारण से साधारण, जो संस्कृत नहीं भी पढ़ा है, जो बूढ़ी दादी माँ है उसको भी पता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो त्वमेव सर्वम कहते हो, फिर ऊंच कहां हुआ, फिर नीच कहां हुआ, फिर छूत कहां हुआ, फिर अछूत कहां हुआ? ये स्पर्श करो, इसको स्पर्श ना करो, उसको ऊंचा आसन में बैठाओ, उसको नीचा आसन में बैठाओ, ये क्यों होता क्यों है? कृष्ण परमात्मा कहते हैं इसका दुर्भाग्य कारण है कि इस अहंकार की वजह से होता है। द ईगो इज द प्रिंसिपल कॉज। बहुत मुश्किल बात है, अंतर्निहित आस्था है कि एक आदमी ईश्वर है तो ठीक है। कौन है ईश्वर? एक बहुत सुंदर पद है, सर्वम ब्रह्ममयम रे रे, सर्वम ब्रह्ममयम, किम वचनीयम किम अवचनीयम किम रचनीयम किम अरचनीयम, ये सब कुछ ही ब्रह्म है। गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के आश्रम में, जिन दिनों में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कोई एक सज्जन आए थे तो 2 हारमोनियम गिफ्ट करके गए। उन दिनों में 1,000 रुपए का हारमोनियम था जो लाहौर से लाया गया था, एक संगीत वर्ग में रखा गया स्वामी नाद रुमानंद जी महाराज के पास में, जो मैसूर महाराजा के आस्थान विद्वान होते थे, अलादिया खान साहब के शिष्य, संगीत सिखाते, और एक सत्संग में रखा गया। अब वो आश्रम में कोई ज्यादा लोग भी नहीं थे उन दिनों में, बिजली भी उन दिनों में आश्रम में नहीं हुआ करती थी, जब आंधी तूफान हो तो सत्संग में रात, यहां पर भी ऐसे जैसे सब जगह होता है कि ज्यादा लोग सत्संग में नहीं आएंगे, किंतु ऋषिकेश से एक सज्जन आते, बराबर एक भजन गा करके जाते थे। उन्होंने देखा आज कोई नहीं है तो कंबल के भीतर हारमोनियम को बांध लिया, कंधे में लेकर के चला गया। फिर उसने आना बंद कर दिया तो गुरुदेव ने पूछा वो सज्जन क्यों नहीं आ रहे, तो किसी ने फिर चुपके से कहा अच्छा ठीक है बुलाओ बुलाओ, अब गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी बुलाएंगे तो कोई मना नहीं करेगा, वो सूर्य के समान। महाराज जी श्री श्रीमानंदमयी मां स्वामी शिवानंद जी महाराज, इन दोनों की दोस्ती बहुत अद्भुत थी। हाँ महाराज जी बराबर शिवानंद आश्रम आते थे, श्री आनंदमयी मां भी बहुत आती थी, कभी कभी हरि बाबा भी आ जाया करते थे। तो ये चारों संतों की बहुत नौका में घूम करके नौका में कीर्तन हुआ करता था, ये बहुत अद्भुत बात पुरानी पुरानी है। तो महाराज जी का बहुत प्रेम था, तो महाराज जी किसको बुलाएंगे तो कोई मना नहीं करता। अभी क्या हो गया, ओ आया संगीत वाला, गाया उसने, गुरु महाराज ने उसको एक फूल माला पहना के तबले का जोड़ी दे दिया, तो अकेला हारमोनियम लेके क्या करेगा, एक तबला भी लेकर के जा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम चोर को चोर क्यों कहें,
सर्वम ब्रह्ममयम रे रे सर्वम ब्रह्ममयम लड़का ब्रह्म, गुरुदेव स्वामी शिवांजी कहते थे लड़का ब्रह्म, लड़की ब्रह्म, गधा गधी भी ब्रह्म, तबले वाला ब्रह्म, हारमोनियम वाला ब्रह्म, इडली डोसा सापड़ चटनी सर्वम ब्रह्ममयम। वो नहीं उनके शब्द थे, किंतु आप जाकर के प्रणाम करो, जैसे कि बैठे हुए हैं आप जमीन पर गद्दी में, खड़ा हुआ आदमी अगर प्रणाम करेगा तो झुकेगा तो उसके चरण तो महाराज के सामने रहेंगे, महाराज दोनों हाथ उनके चरण में रख के प्रणाम करते थे। जो अमूढ़ कोने मूढ़ कोने अपने आप को पृथक्करण करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत सुंदर और स्पष्ट बात है, हम कथा में आते हैं, कुछ लोग 40 साल से आते हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। एक टैक्सी वाले सज्जन कल हमको यहां से ओ प्रेस एंटरप्राइज लेकर के गए, तो सवेरे क्या क्या कथा हुई थी मुझे सब सुनाया, पहले दिन भी सुनाया, बड़ी प्रसन्नता हुई, आनंद हुआ कि वो कथा में नहीं बैठता है, कथा उसके अंदर बैठ रही है। ये बहुत जरूरी है, हम कथा में बैठे और कथा हम में बैठे, ये बहुत दो अत्यंत आवश्यक बात है। कि गुरुदेव श्री स्वामी शिवाजी महाराज कहते रहे कि तीन तरह के लोग होते हैं, कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते, और दूसरा होता है कान से सुनते मुंह से निकाल देता है, तीसरा तो मनुष्य नाम कथित सहसेशु, कान से सुनता है अंदर लेके जाता है। वो उदार थे इसलिए सब होते, उनको पता नहीं है चौथी भी प्रजा होती है, कान से आकर के रिबाउंड होता है, अंदर जाता ही नहीं है। तो ये हम कथा में रोज आकर के बैठने का अभ्यास नहीं, किंतु उसको या श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, उसको मनन करो चिंतन करो, तब कथाएं हमको गढ़नी आती। हाँ, जब तक बुद्ध जिंदा थे तो किसी ने उनको नहीं कहा कि बुद्ध है पूजनीय है, महावीर जिंदा थे तो नहीं कहा ये पूजनीय भगवान है, कृष्ण जब सामने रहे तो कृष्ण को भी हमने कितना कष्ट दिया है, श्री राम को तो हमने वनवास दे दिया। राम को जो कष्ट, अरे एक धोबी भी कहता है तो राम अपने धर्मपत्नी को जो इतना कष्ट के बाद में अग्नि परीक्षा करके आई है उसका भी त्याग कर सकते हैं, राम की उपस्थिति में उनको ये एक दुर्दांत अवस्था में छोड़ा गया, कृष्ण को कहा कि पकड़ लो, हाँ दुर्योधन कहते हैं पकड़ो इनको, बंदी बनाओ इनको, क्या करते ये दंतवक्त्र ये शिशुपाल, उनका अपना खुद साला रुक्मी, किंतु जब इनकी मौत हो जाती है, इनका तिरोधान हो जाता है, ये चले जाते तो इनकी मूर्तियां बना के रख लेते हैं, हमने महात्मा गांधी की मूर्ति रख ली, जिंदे थे तो हमने गोली मार दी थी उनको, महावीर के कान में कांटे भोग दिए थे हमने, बुद्ध को हमने जहर पिला दिया था, सोक्रेटिस को जहर पिला दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जहर पिला दिया गया, ईसा मसीह के हाथों में कील गाड़ दी गई, अभी उनको पूजा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब तो मौका नहीं है ना कहने के लिए, नई नई कहानियां गढ़ देते हमने कि वो भगवान थे, कहानियां गढ़ने के लिए कोई मुश्किल नहीं होता है, कृष्ण की लीलाओं का गायन करके उनको भगवान सिद्ध करते हैं, राम के चरित्र पर हम कहानियां गढ़ के उनको भगवान, वो भगवान थे, वस्तु तो थे, ईश्वर थे, प्रत्यक्ष थे, किंतु वो जिंदा जब इंसान होता है तो उनको मानने के लिए नहीं होते, मर जाता है तो फोटो लगा करके पूजा कर लेते, जिंदा होता है तो मठों से भी संतों को निकाल दिया जाता है, क्लेश करके निकाल दिया जाता है, तुम अधिकार नहीं हो, जब चले गए तो फिर उनको घोषित किया जाता है मरणोपरांत राष्ट्रभास रत्न, ऐसे कहा जाता है। हाँ, जिंदे इंसान को दिल्ली में कोई सम्मान नहीं है, मर गया तो उसके बाद मरणोपरांत आपका सम्मान किया, तो व्हाट ए पिटी, क्योंकि ये हमारे समाज की मूढ़ता है, ये अमूढ़ता नहीं है, क्योंकि वो जब तक जीवित हो तो उनके सामने कोई चर्चा कर सकते हैं, अरे जब सूली लगती है भक्त देख रहे हैं, आशा है कि कोई चमत्कार होता है, किसको? हमारे ईसा मसीह को, क्यों? वो 2500 साल के पहले की बात, 2000 साल के पहले की बात, क्योंकि वो कहते रहे कि मैं भगवान का पुत्र हूं, लोग बाग कहते थे कि भगवान के पुत्र है, और तुम भगवान के पुत्र कैसे हो, जो पायलट था जो फांसी का डंडा डालेगा गले में, हाँ बोलता है तुम हो, कुछ नहीं बोले, वो शांत रहे चुप रहे, और उनके हाथ में कील ठोक दी गई, लोग कहते हैं कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार, कोई चमत्कार नहीं हुआ। हाँ, लोगों ने कह दिया कि 3 दिन के बाद में वो पुनर्जीवित हो गए, अगर हम कहते हैं कि पुनर्जीवित हो गए तो फिर वो मरे कब, ये तो बताओ, इसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता है, ये टीका टिप्पणी नहीं है, यह अंतिश चेतन मन के अंदर में जो कि धुआं उठ रहा है गीता के इस तत्व चिंतन को लेकर के, कि जब हम गीता कहती है मोघास मोग कर्मण मोग ज्ञान विशेष राक्षसी आसुरी प्रकृति मोहिनी सीता, ये राक्षसी वृत्ति को लेकर के हम चल रहे, जो हमारे संतों के प्रति हम जो इतना कड़वापन दिखा रहे, हमारे ईश्वर के अवतारों के प्रति हमको क्या एक चमत्कार चाहिए? अगर हमको चमत्कार प्राप्त हुआ तो हम बोलेंगे कि हमारे लिए भगवान है। एक कुछ श्लोक भी पढ़ लो, 13वां श्लोक पढ़ेंगे। महात्मानस्तु माम पार्थ, महात्मानस्तु माम पार्थ, दैवीं प्रकृति माशिता भजन्त्यनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तः माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च माम् भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरि ओ महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् तु परन्तु पार्थ हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा हैं, दैवी प्रकृति के गुणानुवाद को पुस्तक लाके रखा था, हमारे भाई को बोला तो क्यों नहीं रखता है, बोले काफी हो गया स्वामी जी और लोग नहीं रहेंगे, ये 250 श्लोक हैं केवल। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम इत्यादि, ये जो श्लोक है केवल 250 श्लोक है, जिसने दैवी गुणानुवाद 16वें अध्याय में दैवासुर संपद विभाग योग में किया है। तो कहते हैं कि ये प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन है देवी प्रकृति के, तो वो सब भूतों के सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए बजते हैं। किसको? मुझको, परमात्मा को, अल्लाह को, आहुर मजदा को, जिहो वाह को, झंडे वस्त को, वहाय गुरु को। कल विसामो कार्यक्रम हो रहा था तो यहां आते आते हम भी वहां 5 मिनट बैठ करके आए, बड़ा वो सुंदर बोल रहे थे। वो बोले कि एक इंसान ने ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है इस विषय पर प्रवचन किया, भगवान जैसा कोई तत्व नहीं है, इस पर 1 घंटा बोले, वो इतना अच्छा बोले, इतना अच्छा बोले, लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाएं। तो एक आदमी ने कहा कि महाराज ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, भगवान जैसा कोई तत्व नहीं है, इस पर आपने इतना सुंदर कैसे बोला? बोले भगवान कृपा से। ये इसको नाम बोलते मोगासा, मोग कर बाना, मोग कर। बताइए तो इस मनुष्य की मूढ़ता के संबंध में थोड़ा और विचार करते हैं, व्यर्थ आशा क्या है, ये हमारे जीवन में आशा क्या होती है? मनुष्य यदि किसी के सहारे जीवन यापन करना चाहे तो एक आशा के सहारे जीवन यापन करता है। देख लीजिए, मैंने सुना कि एक वृद्ध माता थी, वो वृद्ध माता जो है वह लकड़ी जंगल से चुन लाती है, सिर में उठाती है और फिर बेच देती है, बेचने में जो 2-3-4-5 मिलेगी उससे उसका गुजारा चलता था। वृद्ध हो गई थी, झुर्रियां पड़ी हुई है, आंख से देख सकती नहीं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन अभिनम जातम तुंडम, ऐसी अवस्था में लकड़ी का एक बोझ सिर में रख करके, वो आपको पता है गांव में क्या होता है, कहीं कहीं पर कोई छोटी दीवार हो ना तो उसके साथ में एक पत्थर लगा देते हैं ताकि लोग बोझ वाले उस पर बोझ रख दें। तो उसमें रखने गई तो नीचे गिर गया, नीचे क्या गिर गया तो गिरती गिरती हाय हाय मौत भी आती नहीं करके उसने लकड़ी फेंक दी, तो उस समय मौत उसके सामने खड़ी हुई। दादी दादी तू मुझे क्यों बुलाई? वो ऐसे देखी, कौन है रे? तुझे कभी देखा नहीं? बोले मैं एक बार ही आती हूं, बार बार नहीं आते, मैं तो मौत हूं। कहा आई? आपने बुलाया ना? हाँ हाँ बुलाया, लकड़ी उठा चल मेरे सिर में रख जा। मुश्किल है दादी, क्यों जीती है? बोल रही है कि मौत आती नहीं। वो मौत आती नहीं बोल करके जीती क्यों है? आशा है, आशा है कि एक दिन कुछ अच्छा हो जाएगा। लोग बहुत तकलीफ में हैं, रोज सवेरे 5 बजे उठ जाते हैं, ये ग्रैंड रोड से ईस्ट में बाहर निकलो, रेलवे स्टेशन में पहला जो चौक है वहां लेफ्ट टर्न करो, वहां एक पन्नालाल टेरेस है, विनु मांकड़ पहले त्यार रहता था, तो हमारे मामा लगते थे तो हम भी बचपन में आते रहे। उसके बाद में एक पार्वती मेंशन भी देखने लायक है, पुरानी चाल है, अभी आजकल भी ऐसे ही होगा आई बिलीव सो। वो एक चाल है, उसमें एक छोटा कमरा रहता है, एक छोटा किचन रहता है, छोटा शौचालय रहता है, वो छड़े छड़े लोग रहते हैं, लड़के लड़के लोग, वो लोबियों में सो जाते हैं, बाकी लोग घर में रहते हैं। किंतु ऐसे ही बोरीवली से दहीसर से भी लोग आने वाले हैं, रोज सवेरे वो 4 बजे उठ जाएंगे, अपना निपट करेंगे, करने के बाद में 6:20 की डबल फास्ट पकड़ लेंगे, यहां करके फिर कहीं चले जाएंगे, अब यहां वाले बस ही चले जाते हैं। रोज वही 365 दिन एक ही ढंग में वो चलते हैं, वो एक डब्बे में ही बैठ जाते हैं, कुछ लोग किताब पढ़ लेते हैं, कुछ लोग ताश खेल लेते हैं, कुछ लोग भजन कर लेते हैं, कुछ लोग सिर में टोपी रख करके सो जाते हैं। ये रोज का एक नियम बना हुआ है। एक साल भी ऐसा नहीं कि बंबई वाले लोग पानी में नहीं फंसे हो, बारिश में नहीं फंसे हो, दादर में लेवल में पानी आ जाता है, फिर भी जीवन जी रहे हैं। बंबई है उस पर आफत बनी हुई है, वो बम भी फूट रहे हैं, फिर भी लोग जीवन जी रहे, धारावी में भी चले जाओ फिर भी लोग जीवन जी रहे हैं। तो ये जीवन क्यों जी रहे? कोई आशा है कि कभी एक दिन तो वी शेल ओवरकम समडे, हमें ऐसा है विश्वास, वी शेल ओवरकम सम, हमें एक एक विश्वास है कि हम आगे बढ़ेंगे, उत्कर्ष करेंगे। तो ये आशा जो है, आशा होना बुरी बात नहीं है, किंतु मूग आशा क्या होती है? ये उमर खयाम साहब का नाम सुने होंगे, उन्होंने किसी, उनको गीत याद नहीं, किसी एक गीत में उन्होंने ऐसे कहा कि दुख झेलते हुए हमने लोगों को देखा है, लोगों की पीड़ा को देखा है, उनको जीवेशना को भी देखा है, चिंतित होते हुए दिखा है, और मनुष्यों को आत्महत्या करते हुए भी देखा है, लेकिन फिर भी जीवन असंभव नहीं होता है। दुखी से दुखी व्यक्ति भी जीता चला जाता है। व्हाट इज दैट सीक्रेट? ये खयाम साहब कहते हैं, पूछा ज्ञानियों से बुद्धिमानियों से, कोई उत्तर नहीं पाया, क्योंकि उन ज्ञानियों को बुद्धिमानों को भी दुखी होते हुए देखा है। बड़ा मुश्किल है, ये लोगों की समस्या और तनाव कितने लोगों को है? सबको है। ये हमारे यहां एक पंडित थे, भाई शंकर भाई पुरोहित, उमा देवी संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी, वो शिवानंद आश्रम बराबर आते थे ऋषिकेश, क्योंकि कन्हैयालाल मुंशी साहब उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे, उनके साथ में आते थे, तो आएंगे तो अपनी व्यथा ही कहेंगे। मुझको भी यहां लेके आए, वो 6 महीना लेके आए थे यहां पर, चलिए स्वामी जी मेरे पास में हम आपको पढ़ाएंगे, मणिभवन के पास रहते थे वो, तो अपने घर में भी एक बार दो बार भोजन, यहां पर भी बहुत आए, संस्कृत में प्रवचन, बड़े अच्छे विद्वान थे, किंतु संस्कृत के महामहोपाध्याय होते हुए भी अंतर्वेदना में बहुत है, वो भारी लोगनि, बाहर सब शांत अंदर अग्नि है, क्यों होता ये? पूजनीय है, हमको उन्होंने संस्कृत सिखाया, किंतु हमारे जीवन की वेदना, क्योंकि उमर खयाम साहब कहते हैं एक दिन मैं दुखी हो गया, सभी से पूछता रहा, ये लोग इतने दुखी हैं, इतने क्लेश में, इतने आतंक में, इतनी तड़प में, फिर भी क्यों जीते? कोई तो बताओ। मैंने ऐसे कहा तो आकाश में से आवाज आया, उसके कारण है आशा, दो शब्द, वो गीत जो है उसके अंदर क्या कहा, आशा। आदमी जीता चला जाता है, फिक्र की है कि हमने दिया जो होता है ना दिया, वो थोड़ा ऊपर से जल जाता है तो उसको थोड़ा काटना पड़ता है, उसको आगे सरकाना पड़ता है, जो अखंड दीप करते हैं ना, तो लोग क्यों दिए को आगे सरकाते चले जाते हैं, बार बार वो अंधकार क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि वो 24 घंटों में सरका दूंगा रोज अतीत होता है, कभी लौट कर आता है, देखता है आशा व्यर्थ तो नहीं है, रोज समय बीत जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है कि जो लौट कर आकर के देखे कि 50 साल तो जी लिया और आशा पूरी हुई कि नहीं हुई, प्रेम था कि नहीं हुआ, तो अपने आप को ठठोले। हम सुख चाहते हैं, हम दुख नहीं चाहते, किंतु जो लोग सुख चाहते हैं वो सुख के नाम पर उनको दुख ही मिलता है। जिन्होंने सुख के लिए प्रयत्न किए हैं वो तमाम लोग हैं, उन्होंने दुख को ही पाया है। एक सन्यासिनी है, उनकी गुरु माता ने कहा, पुरानी बात है, हरिद्वार में इतने हॉस्पिटल नहीं थे, स्वामी जी आप BHL में बराबर जाते रहते हैं, तो हमारी सन्यासिनी महिला को आप पाइल्स का ऑपरेशन BHL में करवा दीजिए। मैंने कहा साधु को पाइल्स क्यों होना चाहिए, वजह क्या है, बोले मिर्ची बहुत खाती है। कितनी मिर्ची खाती है, बोले सिंह चना खाए टेम खाए, हाँ वो सिंह चना के माफिक हरी मिर्ची कटर पटर खा लेती है, मिर्ची को लंबा काट के मिर्ची का पाउडर उसमें भरती है, डोरा बांध करके उसकी सब्जी बना के खाती है। ये मिर्ची का जो सुख है पेट में अल्सर कर दिया, हाँ पाइल्स भी कर दिया। यही संस्पर्श जाहा भोगा दुख यो न यते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधः। जो संस्पर्श के जो भोग हैं वो दुख ही दायक होते हैं। फिर भी मजे की बात है, जब दूसरे से सुख नहीं मिलता है, हम भूल करते हैं, हम सोचते हैं कि हमको आपसे 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 सुख मिलेगा। ध्यान दें, हमको कभी किसी से सुख नहीं मिलेगा और कभी किसी से दुख भी नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि आपकी वजह से हमको बड़ी शांति है, गलत बात, मिथ्या है, मोघाशा है, मोघ कर्म है, मोघ ज्ञान है। जो सुख का कारण है वो भी आप हैं, दुख का कारण भी आप ही हैं। उद्धरेत आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव रात्मनः बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अगर मैं आवश्यकता से अधिक खाता हूं, जो मुझे नहीं खाना है वो खा लेता हूं, अरे मैं क्या करूं, उमा के घर गया था, अरे उमा इतनी भक्ति में थी, समझिए तो खाओ, ये तो खाओ, ये तो खाओ, ये तो खाओ, हाय हाय क्या खिला खिला के मार दिया। उमा बुलाई नहीं है, घर का पता भी नहीं दिए, अब नहीं समझना कि ये मेरे को बुलाई है ऐसा, मगर कहने का बात ये है कि अरे भाई उमा का इतना प्रेम है किंतु पेट तो तेरा था। उमा को क्या पता है कि आपको क्या रुचि है, क्या रुचि है, मेरे पेट को क्या पोसाएगा वो मुझको सोचना चाहिए। तो हम दोष देते हैं फिर दूसरे को। बंगाली में एक बड़ा बड़ा विनोद की बात बोलते हैं, अरे भाई क्या करें, चारू के घर गए, इतना खिलाई इतना खिलाई इतना खिलाई, गिरीश और चारू दोनों लगे ही रहे। अब तो डकार भी आती नहीं, गैस भी छूटती नहीं, वो ट्रैफिक जाम हो गया है, हाँ पेट में, तो वजह कौन है, यू आर द कॉज, आपकी समस्या, यू आर द कॉज ऑफ योर ओन प्रॉब्लम एंड यू आर द सॉल्यूशन ऑफ योर ओन प्रॉब्लम। आपकी समस्या आप हैं और आपका समाधान भी आप ही हैं। मैं क्या करूं, 8:30 बज गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। आपके सबके उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके सबके समय दान के लिए धन्यवाद, आपके भीतर विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। ओम शांति।